वेलकम टू द सेकंड सीजन ऑफ अर्थ अनअर्थ। अर्थ अनअर्थ के दूसरे सीजन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट आकाश। इस सीजन में भी हमारा ये जो शो है वो बाइलिंगुअल ही रहेगा, कुछ एपिसोड्स हिंदी में तो कुछ इंग्लिश में। हमारा प्लान लगभग अभी 10 एपिसोड्स का है, बट देयर इज अ सिग्निफिकेंट ब्रेक फ्रॉम द लास्ट सीजन। इन लास्ट सीजन वी पिक्ड पार्टिकुलर मूवीज या टीवी शोज और फिर उसके पीछे की जो इकोनॉमिक्स और पॉलिसी होती थी उसकी हम चर्चा करते थे। बट इन दिस सीजन वी विल डिस्कस वेरी पर्टिनेंट पॉलिसी इश्यूज एंड विल देन रिलेट दीज इश्यूज बैक टू द पॉप कल्चर। तो मेनी ऑफ दीज इश्यूज हैव बीन डिस्कस्ड इन अ वैरायटी ऑफ मूवीज एंड टीवी शोज, जैसा कि आप देखेंगे। दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द सेकंड सीजन एंड इट वॉज रिकॉर्डेड ओरिजिनली फॉर अ यूट्यूब शो। तो हमारे एक मित्र हैं और मेंटर भी हैं, कुमार आनंद, दिल्ली के थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी में डायरेक्टर रह चुके हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के NIPFP जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी है उसके साथ भी उन्होंने काम किया है। कुमार का एक नया यूट्यूब शो है जनहित जंक्शन, जिसको उन्होंने पिछले हफ्ते ही लॉन्च किया है। इस शो में जो करंट न्यूज साइकिल चल रहा है उस पर ही चर्चा करते हैं, बट एक काफी फ्रेश प्रिज्म, एक काफी फ्रेश पर्सपेक्टिव से चर्चा करते हैं। एक आम मतदाता यानी वोटर, करदाता यानी टैक्स पेयर और उपभोक्ता यानी कस्टमर, बस इनके हित को ध्यान में रखते हुए जो हाल में देश में चल रहे हैं उस पर बातचीत होती है। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके शो पर जाने का टू टॉक अबाउट दिस न्यू मॉडल बिल दैट नीति आयोग हैज पुट अप टू टैकल लैंड डिस्प्यूट्स। नीति आयोग जो कि सरकार का थिंक टैंक है, वो एक नया मॉडल बिल लेकर आया है जो हमारी प्रॉपर्टी राइट्स रेजीम को मजबूत करने का काम करेगा, बशर्ते राज्य सरकारें उसे अपना लें। अब जो ये मुद्दा है इस पे काफी बॉलीवुड फिल्मों में चर्चा होती रही है, काफी बॉलीवुड फिल्में इसके इर्द गिर्द घूमती रही हैं और वो आज से नहीं बल्कि दशकों से, यानी जब से बॉलीवुड शुरू हुआ है तब से ही यह मुद्दा बॉलीवुड में चर्चा में रहा है। सो 1953 में ही एक मूवी आई थी, दो बीघा जमीन करके एक मूवी थी, बिमल रॉय डायरेक्टर थे, काफी क्रिटिकली एक्लेम्ड हुई थी मूवी। तो उसमें भी ये जो टेंशन है प्रॉपर्टी का, और वहां चूंकि उस समय जमींदारी सिस्टम हाल ही में खत्म किया गया था, पर इस मूवी में ये दिखाया गया कि एक छोटा सा किसान है जिसके पास दो बीघा जमीन है, आई थिंक बलराज सहनी जो कैरेक्टर प्ले करते हैं शंभू का, और उसको एक लोकल जमींदार छीनना चाहता है, खरीदना चाहता है, या फिर आप ऐसा ही कहें कि यूं ही कहें कि छीनना चाहता है, क्योंकि उसको एक मिल बनाना होता है। तो थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला भी पर्सपेक्टिव लाया गया है, और शायद कोई डेट होता है जो कि नहीं चुकाया होता है शंभू ने। तो फिर ये इस पे एक कहानी है पूरी। तो उस समय से लेकर अगर हम आज तक देख लें तो प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो काफी एक सेंट्रल इशू रहे हैं काफी सारी बॉलीवुड मूवीज में। और 1953 के बाद 1978 में, एक्चुअली बॉलीवुड तो नहीं बट 1978 में कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ, मेरे समझ से काफी ज्यादा डैमेजिंग हुआ, जो कि जनता सरकार थी उस समय। जनता सरकार नई नई चुनकर आई थी, जनता पार्टी की सरकार ने राइट टू प्रॉपर्टी जो कि एक मूलभूत अधिकार था हर भारतीय नागरिक का, फंडामेंटल राइट था, उसको 48th अमेंडमेंट पास करके रिड्यूस करते हुए उसको एक लीगल राइट बना दिया गया। कहा तो गया कि ये बेसिकली गरीबों के हित में होगा, अमीरों का जो फंडामेंटल राइट था वो फंडामेंटल राइट नहीं होगा, बट इसका सबसे ज्यादा खामियाजा पिछले कई दशकों में जो 1978 के बाद हुआ है उसमें गरीबों को ही भुगतना पड़ा है। जब भी किसी बेसिकली प्रॉपर्टी से जब फोर्सिबली उसको स्टेट गवर्नमेंट्स अक्वायर करती है तो गरीबों की जमीन फोर्सिबली अक्वायर की जाती है, अमीरों की ज्यादा जमीन उतनी आपने नहीं सुनी होगी फोर्सिबली अक्वायर होती है। और अभी तो खैर कंपनसेशन वगैरह जो है उसके रूल्स में थोड़ा काफी बदलाव आया है, पर इसका जो कुल मिलाकर खामियाजा है जो कि आप कह सकते हैं कि वेल इंटेंशन पॉलिसी वेंट रॉन्ग है एक तरह से, अगर आप उतना लीवे जनता गवर्नमेंट को देना चाहें तो। पर उसके बाद देख लें फिर 2006 में एक मूवी आई थी खोसला का घोसला, काफी काफी कल्ट क्लासिक टाइप की एक मूवी है, काफी अच्छी मूवी है, अनुपम खेर उसमें जो मेन किरदार है वो निभा रहे हैं। और ये मूवी जो है एक मिडिल क्लास फैमिली के स्ट्रगल को, जो लैंड माफिया है उनसे और जो जमीनी विवाद के मुकदमे वगैरह हैं उसमें उलझे हुए पूरे इसको, मतलब उसको काफी बखूबी दर्शाया गया है इस मूवी में। और मैं आपको ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना तो नहीं दिखाना चाहूंगा, पर जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट आया था 2016 में, उससे काफी वो सारी चीजें बेहतर हुई हैं। और ये जो एक्ट आने वाला है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि अगर कुछ राज्य सरकारें इस मॉडल बिल को टेकअप करके लेजिस्लेशन पास करें तो आएगा कई राज्यों में, वो भी इस दिशा में काफी एक अच्छा कदम होगा। फिर अगर हम 2018 में देख लें तो एक मूवी आई थी लव पर स्क्वायर फुट, नेटफ्लिक्स की मूवी थी, विक्की कौशल काफी इंपॉर्टेंट किरदार निभा रहे थे इस मूवी में, और उसमें दिखाया गया कि प्रॉपर्टी प्राइसेस कितनी ज्यादा है, स्पेशली मुंबई का, मेरे समझ से उसमें मुंबई की चर्चा है, तो प्रॉपर्टी प्राइसेस कितनी ज्यादा है, अफोर्डेबल हाउसिंग कितनी बड़ी प्रॉब्लम है स्पेशली बड़े शहरों में जैसे मुंबई में। मुंबई में आपको रेंट वगैरह भी काफी ज्यादा है, तो वो सब इसीलिए होता है क्योंकि जो सप्लाई ऑफ लैंड है वो काफी लिमिटेड है, और वो लिमिटेड इसलिए नहीं है कि लैंड लिमिटेड है, बल्कि इसलिए है क्योंकि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं इनके अराउंड, रेंट कंट्रोल हुआ, फिर से FSI की जो लिमिट है मुंबई में, वो सब काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है। तो उस पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे इस एपिसोड में, बट उससे एक रिलेटेड डेफिनेटली जो टॉपिक है कि लैंड डिस्प्यूट्स का और उसको जल्दी सुलझाने का, तो वो इस मॉडल बिल में जरूर है। फिर अभी 2020 में एक मूवी आई थी गुलाबो सिताबो, अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना जिस मूवी में थे, काफी काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी, अमेजोन प्राइम पे है। और उस मूवी में मिर्जा हैं जो कि अमिताभ बच्चन जो किरदार निभा रहे हैं, और बांके हैं जो आयुष्मान निभा रहे हैं जो किरदार, तो मिर्जा के किराएदार हैं बांके, और एक स्क्वैटिंग होती है जो कि अगर आप इस प्रॉपर्टी पे रह गए हैं इतने साल तो ये प्रॉपर्टी पे आप पे एक जो हक होता है एक तरह से, जो कि भारत के कानूनों के हिसाब से बहुत बहुत सारे राज्यों में ऐसा है कि आपको हटाया नहीं जा सकता है वहां से, तो उस एक जो टॉपिक है उस पर टच कर रही है ये मूवी, और काफी काफी ज्यादा इसमें उसमें भी कॉर्कर पॉलिटिशियन से लेके जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं और जो भी मिडिल मैन हैं, जो पूरा करप्शन इस सिस्टम का उसको दिखाया गया है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इस न्यू मॉडल बिल से पूरी तरह तो बिल्कुल सॉल्व नहीं होंगी, पर काफी हद तक इन चीजों को चेंज किया जा सकता है अगर राज्य सरकारें इस बिल को अडॉप्ट करें। तो जो प्रॉपर्टी राइट्स रेजीम है उसमें जो सरकार का, चूंकि ये सरकार का एक बहुत ही मूलभूत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रॉपर्टी राइट्स को इंश्योर करना, तो वहाँ ये इंटरवेंशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इस पर आप इस एपिसोड में और ज्यादा सुन सकते हैं।
आज की हमारी चर्चा का विषय है भूमि विवाद और भूमि विवाद से जुड़े मसले। भूमि संबंधित विवादों की जड़ क्या है, क्या इसका कोई समाधान हो सकता है, और अगर हाँ तो वो क्या है, और हम कैसे इस माध्यम से इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। अभी कल ही बिजनेस अखबार मिंट में एक रिपोर्ट आई है जहां ये जिक्र किया गया है कि नीति आयोग ने, जो सरकार का अपना थिंक टैंक है, एक नया मॉडल बिल ड्राफ्ट किया है जिसके माध्यम से राज्य सरकारें लैंड टाइटल्स के सटीक होने की गारंटी देंगी और किसी प्रकार का डिस्प्यूट होने पर कंपनसेशन भी देंगी। ये ड्राफ्ट बिल हमारे कोलोनियल एरा लॉज को रिप्लेस करेगा और राज्यों से अपने लैंड रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करवाएगा और लैंड ओनर्स के डिटेल्स इन डिजिटल रिकॉर्ड्स को से जोड़ेगा और ट्राइब्यूनल्स भी सेट करेगा जहां किसी तरह की जमीनी विवाद 3 साल के भीतर भीतर अंदर सुलझाया जाएगा। तो ये पहल सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आकाश इस तरह की पहल पहले भी हमने सुनी है, तो क्या डिफरेंट है इस बार, क्या अलग है, और लैंड टाइटल्स इतना क्यों जरूरी है जमीनी विवाद जो हमारा आज का मुद्दा है उसको 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 सुलझाने के लिए?
श्योर कुमार, पहली बात तो ये जो कि काफी जिसको एक कैवियाट की तरह से मैं पहले ही रख देना चाहता हूँ कि ये काफी एक प्रिलिमिनरी स्टेज जो हम कहते हैं काफी शुरुआती चरण में है, क्योंकि अभी तक किसी राज्य सरकार ने ये पहल नहीं की है बिल्कुल आने की, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ हम नहीं देख रहे हैं। तो नीति आयोग का एक जो मॉडल बिल का आना है वो एक काफी आप जिसे कह सकते हैं शुरुआती चरण है, अभी काफी समय लगेगा इस चीज को रियलिटी में तब्दील होने में, और ऐसे कई इनिशिएटिव्स हैं जो कि सरकार ने लिए हैं, जो सरकार हमेशा लेते रहती है, जो शुरुआती चरण तो जिनका काफी अच्छे से होता है और काफी उसमें खबरें आती हैं, उस पे रिपोर्ट्स बनती हैं, पर उस पे अमल नहीं हो पाता। तो ये जरूर है, ये देखने को रहेगा कि सरकार इस पे अमल कैसे करती है और सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को इस मामले में अमल करने के लिए कैसे प्रेरित करती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये मुद्दा, चूंकि आपने पूछा कि मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो मैं बता दूं कि दो तिहाई जो कोर्ट केस हैं, 3 करोड़ के कोर्ट केस भारत में अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, और भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है उसको हमेशा से ओवरबर्डन माना जाता है। यहाँ इन्वेस्टर्स आना नहीं चाहते हैं क्योंकि यहाँ जुडिशियल सिस्टम जो जो थोड़ा है हमारा, उसमें काफी समय लग जाता है केस को प्रोसेस होने में। तो दो तिहाई जो ऐसे कोर्ट केस हैं वो लैंड डिस्प्यूट हैं, जो कि जमीन का विवाद है, जमीन भूमि विवाद है, और वो लगभग 2 करोड़ केसेस जैसे। अब उस पर थोड़ा और देख लें तो बेसिकली इजराइल जो कि एक देश है, उतना बड़ा एरिया, उससे उतना और उससे भी बड़ा एरिया, और लगभग उतने ही ज्यादा लोग इफेक्टेड हैं पूरे देश में भूमि विवाद से डायरेक्टली, और वो डायरेक्टली अफेक्टेड है, इनडायरेक्टली तो काफी लोग अफेक्टेड हैं एक्चुअली, तो उसकी बात भी करेंगे। लगभग $200 बिलियन है अगर आप इसको
रिपोर्ट में, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि केवल 800 जो केसेस है ना, जो केवल 800 डिस्प्यूट से वो $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट रुका पड़ा है, और जो जो इसराइल की जो का जो क्षेत्रफल है वो एरिया इफेक्टेड है केवल 800। तो आप समझ लीजिए कि जब 2 करोड़ जो पेंडिंग केसेस पेंडिंग है उसका कितना बड़ा क्षेत्रफल होगा, जो 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 ये इशू जिसके कारण, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो गई या इकोनॉमी में और भी कुछ भी आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और आप तो डेवलपमेंट स्टडीज के छात्र भी, आपको पता होगा कि स्टडीज तो कर पाएगा लेकिन डेवलपमेंट नहीं होगा अगर इस तरह के कोर्ट केसेस में आप फंसे फंसे रह जाएंगे। और हम काफी समय से फंसे हैं, और कुछ कुछ केसेस तो ऐसे हैं जो 10 साल 15 साल 20 साल से चले आ रहे हैं। तो ये टाइटल, जो टाइटल का हम कहते हैं उसकी जरूरत स्पेशली उनको थोड़ा ज्यादा हो जाती है जो जिनके जिनके पास जो सरकार की जो प्रक्रिया है, जो प्रणाली है, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड्स के एक्सेस की हो, और अगर आप कोर्ट्स में चले गए तो कोर्ट से न्याय मिलने का, ये दोनों ही चीज जो जो इकोनॉमिक तरीके से बहुत सक्षम नहीं है उनके लिए एक डबल दोहरी मार हो जाती है। और सरकार का कहीं ना कहीं एक एक मूलभूत जिम्मेदारी उनकी है, सरकार की अपनी जिम्मेदारी कि आप ये जो कोर्ट केसेस जो मामले हैं लैंड प्रॉपर्टी टाइटल्स का जो इशू है कि अगर जमीन मेरी है तो वो अनडिस्प्यूटेड मेरा हो, और उसके रिप्रेजेंट उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई कागज का टुकड़ा हो, और वो कागज बहुत क्लियरली दिखाता हो कि ये जमीन मेरा है, और उसके माध्यम से मैं उस पर चाहे लोन ले सकूं, लोन के माध्यम से जमीन में इन्वेस्टमेंट कर सकूं। और जब वो टाइटल नहीं होता है, और टाइटल अगर या तो एब्सेंट है या वो है ही नहीं, और अगर है भी तो कभी कभी उसमें बहुत सारे लोगों का हस्तक्षेप होता है और क्लियर नहीं होता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि उस जमीन आपका एक डेड कैपिटल है। इकोनॉमिस्ट है हर्नांडो डी सोटो जिन्होंने कहा है कि वो जो कैपिटल है वो एक डेड कैपिटल हो गया, क्योंकि उसका आप कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको यूज करके आप किसी तरह का धनराशि रेज करना, उसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं कर सकते। तो ये स्पेशली उनके लिए हानि हो जाती है ज्यादा, जिनके पास जो इकोनॉमिक तरीके से उतने ज्यादा सक्षम नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो हर्नांडो डी सोटो का जो उन्होंने जो एक थियरी दी है डेड कैपिटल के अराउंड, उसमें हमने चूंकि देखा है कि उससे कितना ज्यादा बड़ा नुकसान होता है, और स्पेशली कितना ज्यादा बड़ा नुकसान किसी भी एक अर्थव्यवस्था में उन लोगों को होता है जो मार्जिन्स पे खड़े हैं। जब भी हम बात करते हैं उनकी, जो कि एक जो जो कि वंचित हैं, गरीब हैं, उन लोगों को ज्यादा परेशानी होती है। और इससे होता क्या है कि एक शैडो इकोनॉमी जिसको हम भूमिगत अर्थव्यवस्था कहते हैं, मतलब काला बाजार एक तरह का, वो उत्पन्न होता है इससे। और उस काला बाजार में कई चीजें होती हैं जो कि इलीगल होती हैं, टेररिज्म, टैक्स इवेशन की तरह की चीजें होती हैं, और उसमें कई बार बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिनको इलीगल नहीं होना चाहिए। यानी जो भी आप जो लोग भी हैं जो गरीब हैं, उनके लैंड पर कभी वो लोग उसको बेच नहीं सकते, लोन नहीं ले सकते, उसको उसको एक्सपैंड नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं जा सकते। तो उससे होता क्या है कि एक इनफॉर्मल इकोनॉमी में वो लैंड भी फंस जाता है, और वो चीज काला बाजार में कतई नहीं रहनी चाहिए। तो इस दिशा में ये एक जरूर बेहतर कदम होगा, उसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। कि मेरा भी मानना है कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत मालिकाना हक यानी प्रॉपर्टी राइट्स का जो रेजीम है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इस चीज को वर्ल्ड ओवर मतलब हर बाकी सारे देशों में देखा जा चुका है। तो इस दिशा में ये जरूर बहुत ही अच्छा कदम है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक अच्छा स्टेप है, पर ये कितना सक्सेसफुल हो पाएगा आगे जाकर, कितने राज्य इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको अभी देखा जाना बाकी है।
हाँ, तो ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि जो लैंड है, जो जमीन की जो के जो विवाद होते हैं, जमीन से जुड़ा जो भी मसला है, वो हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट का सब्जेक्ट है, वो राज्य सरकारों के हिस्से में आता है। तो केंद्र सरकार जो नीति आयोग के माध्यम से जो उन्होंने बिल बनाया है, जो ड्राफ्ट बनाया है, अब ये जिम्मेदारी होगी कि वो केंद्र राज्य सरकारें उसको इस्तेमाल करें। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कुछ राज्य सरकार उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो बाकी राज्य सरकारों को भी ये सिग्नल जाएगा उसके फायदे को देखते हुए, और फिर वो भी एडॉप्शन धीरे धीरे शायद सुचारू तरीके से हो जाए। लेकिन ये देखना कि आजादी के साथ 70-72 इतने सालों के बाद हम प्रॉपर्टी टाइटल्स और इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, जो ये चीजें बहुत पहले सुलझ जानी चाहिए थी। और लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए, अगर आते हैं तो, और अभी आए नहीं है, अभी आने की प्रक्रिया चल रही है और आने की कोशिश जारी है।
तो इस पे दो चीजें मैं और बोलना चाहूंगा कुमार, क्योंकि बेसिकली जो राज्य सरकारों की बात है उसमें कितने राज्य सरकार इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ये देखा जाना अभी जरूर बाकी है, पर कुछ राज्य सरकार थे जिन्होंने भारत सरकार से पहले ही इसको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला माना था और उस पे काम उस दिशा में शुरू किया था। तो उसमें एक उल्लेखनीय उदाहरण है आंध्र प्रदेश का, पर तब चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी आंध्र प्रदेश में, और उन लोगों ने ब्लॉकचेन से एक डिजिटल रजिस्ट्री बनाने की दिशा में काम शुरू किया था। वो कितना किस हद तक आगे पहुंचा और फिर सरकार बदल गई, तो मुझे जहां तक लगता है कि उसमें कुछ खास अभी काम अच्छे से हुआ नहीं है। पर ये मॉडल बिल जो है ये होपफुली कुछ राज्य सरकारों को जरूर प्रेरित करेगा एडॉप्ट करने के लिए। पर इसमें एक और बात है कि राज्य सरकार पे ओनस भी डाला जा रहा है, तो इसलिए ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। पर मैं अभी फिर पीछे लेते चलता हूँ और मैं बताता हूँ कि कितना इससे क्या परेशानी है, उपभोक्ता करदाता और मतदाता को क्या परेशानी हो रही है इस चीज से, जो अभी स्टेटस क्वो है, यानी कि जो अभी चल रहा है हमारे देश में, जो भी एक थोड़ा वीक सा जो प्रॉपर्टी राइट्स का रेजीम है उसे क्या प्रॉब्लम है। तो हम देखें तो एक सतही तौर पे हम कह सकते हैं कि मुंबई मेट्रो फंसा हुआ है क्योंकि लैंड केस है, बुलेट ट्रेन के कई प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं, स्टील के कुछ प्रोजेक्ट फंसे हैं, 700 रोड केसेज फंसे हुए हैं, पर ये सब फर्स्ट ऑर्डर की चीजें हैं, ये बस जो दिख रहा है हमें वो है। सेकेंड ऑर्डर पर अगर हम जाके देखें तो ऐसा है कि इस प्रॉपर्टी राइट्स रेजीम जो कि वीक है उसके कारण कितना सारा इन्वेस्टमेंट है जो कि भारत में आ ही नहीं रहा है, जो कि जिन्होंने जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पहले ही देख लिया है कि देखो भारत में मतलब ये ऐसा रेजीम है तो वो इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो उसी से पहले ही डरे हुए हैं, तो उसका तो कोई डेटा भी नहीं है हमारे पास कि इसके कारण कितना सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो हो सकता था नहीं हुआ। तो
बिल्कुल
ये जरूरी ये है कि इसके सीवियरिटी को हम एक एक्नॉलेज करें।
बिल्कुल सही। और जब हम इंडिया चाइना की बात करते रहते हैं कि देखो चाइना में अगर लोग वहां से इन्वेस्टमेंट छोड़ करके इंडिया आना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और उस इन्वायरमेंट उस वातावरण को एक इन्वेस्टमेंट के लिए सुचारू वातावरण बनाने के लिए एक लैंड टाइटल और लैंड डिस्प्यूट्स कम से कम हो और लैंड टाइटल्स क्लियर हो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको बिल्कुल कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी जो हमारे रोड के मिनिस्टर हैं, रोड और हाईवेज के मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं, उन्होंने कहा है कि 773 जो नेशनल रोड प्रोजेक्ट हैं जिनकी कुल लागत करीबन 2.7 trillion रुपीज है, मतलब 2,70,000 crore का है, वो रुका पड़ा है। तो वे केवल रोड का आप देख लीजिए, तो अगर आप बाकी सारे क्षेत्रों को भी मिला लेते हैं तो जितने अमाउंट की जो धनराशि जो इन्वेस्टमेंट रुकी पड़ी है इन डिस्प्यूट्स के कारण, तो वो आपको एक सिग्नल देता है कि कितनी ज्यादा रोजगार बन सकते थे, कितनी ज्यादा आर्थिक तरक्की हमारे देश में हो सकती थी और जो नहीं हो रही है। और ये जो सरकार का भी सडनली एक तरह से सडन तो नहीं कहूंगा पहल होता रहा है और ज्यादा उस पर अमल नहीं हो पाया, और अगर इस बार अमल होता है तो ये एक सिग्नल देता है कि इस बार सरकार जब खुद इन समस्याओं को खुद झेलती है, चाहे वो बुलेट ट्रेन का ना बनना हो लैंड डिस्प्यूट्स के कारण, या फिर मुंबई मेट्रो का हो, या फिर हाईवेज के प्रोजेक्ट्स रुके हो, तो तो उनको दिखता ही है कि आप रिफॉर्म कीजिए और लैंड टाइटल्स को क्लियर कीजिए और ताकि आप इस माध्यम इस रास्ते पे आगे बढ़ पाए। और आम जनता तो ये प्रॉब्लम, आम जो उपभोक्ता मतदाता और करदाता हैं, वो ये प्रॉब्लम तो वो कई साल कई दशकों से फेस करते आ रहे हैं। तो अच्छी बात है कि ये प्रॉब्लम सरकार को डायरेक्टली फेस करना पड़ रहा है, जिसके कारण आर्थिक गति देश की थोड़ी कम हो गई है और उनको अब लग रहा है कि अब देखो कि बॉटल ने कहाँ कहाँ बना है उसको क्लियर करते हैं। तो अब जब अपने प्यान पर ही है तो वो ही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छी बात होती कि अगर बाकी लोगों की परेशानी को भी पहले से देखते और तो शायद हम इस आर्थिक तरक्की के रास्ते पे बहुत आगे पहले निकल चुके होते। लेकिन अगर अभी आ रहे हैं और अगर अच्छे से दुरुस्ती से आते हैं तो अच्छी बात होगी।
बिल्कुल बिल्कुल। पर एक और चीज देखना बहुत जरूरी होगा कुमार, की अभी जो डिजिटल एनवायरनमेंट है और जो जिस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, इंटरनेट वाइडली अवेलेबल है, सरकारी ऑफिसेज में भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, तो इस कारण इसको करना बहुत आसान हो गया है आज कंपेरेबली, रेदर देन लेट्स से 20 साल पहले अगर ये करने की कोशिश की जाती तो काफी मुश्किलें आती, तो वो भी एक देखना होगा हमें। पर उसके अलावा मैं आपको
आकाश, मैं आपकी बात से इसमें थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। मैं ये कहूंगा कि बाकी जो देश हैं, कंप्यूटर तो पिछले 50 साल 70 साल की ईजाद है, उससे पहले तो कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे हर जगह और आखिरी के 20-30 सालों में हर जगह अवेलेबल हो गए हैं। तो प्रॉपर्टी की जो का जो टाइटल का जो पूरा एक प्रक्रिया है, और जब शुरू में जो हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं, तो कलेक्टर पार्ट क्या होता है, यही कि आप चाहे वो भूमि के ऊपर राजस्व जो आप लेते हो, जो टैक्स जो रेवेन्यू जमा करते हो, तो उनकी जो डिटेल्स हैं वो उनके पास बहुत अच्छे से होनी चाहिए और उनका मेंटेन करना एक उनका एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। आफ्टर एक अगर आपने जब कोर्ट सिस्टम और पुलिस सिस्टम तैयार कर रखा है और आर्मी नेवी वगैरह तैयार कर रखा है, जो कि एक्सटर्नल डिफेंस और इंटरनल डिफेंस की बात होती है, तो उसके बाद ये एक तरह का एक मेजर पब्लिक गुड है जो कि सबको बराबर तरीके से उनको हेल्प कर सकता है अगर ये अच्छे से चले। तो कंप्यूटर हो जाना, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कंप्यूटर हो जाने से ये चीज आसान हो गई है, लेकिन इस बात के लिए फ्री चिट दे देना कि पहले कंप्यूटर नहीं था तो ये नहीं हो पाया, ये सही नहीं है। पहले भी होना चाहिए था और पेन पेपर के जमाने में भी बाकी सारे देशों में हुआ करता था, हमारे देश में भी हुआ करता था, बट यही है कि धीरे धीरे वो व्यवस्था चरमरा गई थी, चरमरा चुकी है और अभी भी पूरी तरह से अब सुदृढ़ करने का उसको तरीका हम नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं और कंप्यूटर उसमें हेल्प कर रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब एक और एनेक्डोटल ऑब्जर्वेशन जो जिसको कहते हैं, मैं मतलब ऐसा बता दूं बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे इससे, कि जब भी मैं किसी बड़े शहर में या फिर मतलब जो छोटे शहर भी हैं, शहर के किसी भी सेंट्रल लोकेशन में जाता हूं, चाहे वो कोई छोटा शहर हो या फिर बड़ा शहर हो, मैं दिल्ली का एग्जांपल दूंगा, कनॉट प्लेस मान लेते हैं, तो कनॉट प्लेस में मैं जब वॉक के लिए कभी कभी जाता था तो मुझे वहां खाली पड़ी जमीनें, खाली पड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दी और मतलब इस चीज का मुझे गहरा आश्चर्य हुआ कि इतने सेंट्रल लोकेशन पे जहाँ रियल एस्टेट प्राइसेज इतनी ज्यादा हैं, वहां पे जमीन खाली कैसे हो सकती है, और वहां पे मतलब जो बिल्डिंग्स हैं उसमें कुछ हो क्यों नहीं रहा है। तो फिर बाद में मैंने उस पर थोड़ी स्टडी करी, थोड़ा देखा, तो पता चला कि दो ही कारण हो सकते हैं उसके। एक तो या तो वो सरकारी जमीन होगी, तो सरकारी जमीन होगी तो वो खाली हो सकती है, क्योंकि सरकार के पास ऐसे काफी सारे एसेट्स हैं जो कि यूटिलाइज नहीं, तो उसपे बजट में काफी कुछ हुआ और आपने शायद इसको डिस्कस भी किया था पिछले एपिसोड में, तो वो है। और दूसरा है जमीनी विवाद, कि कई जगह वहां पे विवाद चल रहा है, तो आप बिल्डिंग पे जाके आप क्लोजली देखोगे तो वहां पे कुछ एक नोटिस सा चिपकाया होगा और वो नोटिस हो सकता है 20 साल से, पिछले 25 साल से, 30 साल से चिपका पड़ा हुआ है कि ये जमीन में इस जमीन पर विवाद है।
बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद आती है। और ये जो आपने कनॉट प्लेस की बात कही, वही बात बिल्कुल लागू होता है बम्बई में भी। तो साउथ बॉम्बे में जहाँ की रियल एस्टेट प्राइसेस पूरे इंडिया में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा महंगा है, वहां पे भी ऐसी बहुत सारी जमीनें हैं, मिले हैं, जो पिछले कई दशकों से बंद पड़ी हैं। तो बॉलीवुड के जो 90 और बॉलीवुड की जो मूवी के एक्शन मूवीज के जो क्लाइमेक्स सीन हुआ करते हैं, जहाँ पे चाहे अजय देवगन, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार जाके विलेन से लड़ते हैं, सलमान खान वगैरह, तो आप देखोगे कि वो इन्हीं मिल में शूट किया होता है, किया जाता है। जो शहर के प्राइम लोकेशन है वो एक खंडहर बना हुआ है, एक वहां पे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जो आज के डेट पे खंडहर बनी है, वहां पे शीशे टूटे पड़े हैं, दीवार पे आपको पेड़ पौधे हुए उगे हुए दिखेंगे। तो ऐसा लगता है कि हमने जो जमीन की कीमतें हैं, जैसे बंबई हो गया या दिल्ली हो गया, बड़े शहरों में या कहीं बाहर छोटी जगहों पे भी जो जमीन की कीमतें हैं, तो उनकी जो अवेलेबिलिटी है और अवेलेबिलिटी और डिमांड मिलकर के वो प्राइस डिसाइड करता है, और जो अवेलेबिलिटी है वो हमने कहीं आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से रोक रखी है ना। अगर वो अवेलेबिलिटी क्लियर टाइटल्स के कारण और डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाने के कारण बढ़े तो प्राइसेस भी कम होंगी, जिसके कारण उसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, और फिर ज्यादा से ज्यादा लोग, चाहे आप अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर लो या अफोर्डेबल बिजनेसेस की बात कर लो, जो कि एक मेजर कंपोनेंट रेंट में जाता है, तो वो सारी कीमतें कम होंगी, जिसके कारण मतदाता और करदाता, उपभोक्ता सबका फायदा होगा। उपभोक्ता को चीजें थोड़ी कम दाम कीमतों में मिल पाएंगी। तो ये एक कृत्रिम स्केर्सिटी, एक कृत्रिम जो कमी बना करके हमने रखी है, इसका एक साधारण सा एक एक मेजर पोर्शन जो रेंट और प्रॉपर्टी के प्राइसेस होते हैं, उसका तो इलाज मुझे सामने सीधा सीधा दिख रहा है कि आप ये प्रॉपर्टी टाइटल्स को, डिस्प्यूट को क्लियर कर दीजिए, और टाइटल्स को क्लियर दीजिए और डिस्प्यूट्स को कम कीजिए और जल्दी से रिजॉल्व कर दीजिए। तो अपने आप जो ये डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, वो सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगा, और फिर आप देखिए, आप चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो या अपने देश में ही खुद जो डेड कैपिटल अलाइव हो जाएगा और जो मरा हुआ कैपिटल जिंदा होता है, तो चाहे वो अमीर फॉरेन इन्वेस्टर हैं या हमारे देश में जो गरीब लोग हैं जिनके पास छोटी प्रॉपर्टी है लेकिन क्लियर टाइटल नहीं है, उन दो हर कोई अपना उसका उसको लेवरेज करके, उसका इस्तेमाल करके
बिल्कुल।
अपना तरक्की कर सकता है।
तो इस बात में मैं थोड़ा एक ब्रीफ दे दूं कि कैसे ये काम करेगा, जो मॉडल बिल है उसमें एक्चुअली है क्या। तो इस मॉडल बिल में सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात जो है, जो कि सबसे इस बिल का सबसे बड़ा फीचर है, वो ये है कि सरकारी जिम्मेदारी तय की गई है। आप अक्सर देखेंगे किसी बिल में सरकार की जिम्मेदारी तय नहीं होती है, लोगों की जिम्मेदारी तय होती है कि आपको क्या करना है, आपसे क्या आकांक्षा है, आपसे क्या अपेक्षा की जा रही है। पर यहाँ राज्य सरकार की जिम्मेदारी तय की गई है कि जमीन कागजात जो हैं वो एक्यूरेट होने हैं, और उसकी जिम्मेदारी सारे राज्य सरकार की है। अब रिकॉर्ड वो बनाएंगे, जब ये कोई भी लेट से कि कोई राज्य सरकार इस बिल को पास करता है, तो वो एक रिकॉर्ड बनाएगा सारे जमीन के, किसकी कहाँ जमीन है उसका एक रिकॉर्ड बनेगा। उसमें अगर किसी को परेशानी है तो उस रिकॉर्ड के बनने के 3 साल के भीतर वो एक याचिका दाखिल कर सकते। वो याचिका दाखिल करने के बाद एक जो टाइटल के रजिस्ट्रेशन का ऑफिसर होगा वो उस याचिका को फॉरवर्ड कर देगा एक लैंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑफिसर के पास, जिनको इस चीज की बेसिकली जाकर एक पड़ताल करनी होगी, और वो कुछ एक फैसला इस पे दे देंगे। उससे अगर आपको परेशानी है तो 30 दिन के अंदर आप एपेलेट ट्रिब्यूनल में, जो कि इस काम के लिए खास एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाएगी राज्य सरकार, जो कि इसका जो प्रेशर है हमारे कोर्ट सिस्टम से, उससे लेकर उससे उसको रिड्यूस करने में कितना, आप जो कि हमने कहा 2/3 केसेज इसी के पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो वो इधर एपेलेट ट्रिब्यूनल में आएगा। एपेलेट ट्रिब्यूनल में भी अगर आपको परेशानी है तो एक हाई कोर्ट की भी बेंच बैठाने की बात है, वहां पर हाई कोर्ट की बेंच उस पर सुनवाई करेगी। तो काफी स्ट्रीमलाइन सिस्टम है, और मेरे समझ से सबसे बड़ा फीचर यही है कि सरकारी जिम्मेदारी तय हो रही है। पर इससे जो हम बात कर रहे हैं, 3 लेंस हम जो देख रहे थे, मतदाता करदाता उपभोक्ता को क्या फायदा हो रहा है, तो चूंकि आपने बहुत कुछ कवर कर लिया उसमें, पर मतदाता को सबसे बड़ा फायदा यह है कि नौकरियां इससे जरूर बढ़ेंगी। और कैसे बढ़ेंगी, तो जमीन अधिग्रहण आसान हो जाएगा इसमें। एक और ये चीज है कि कंपनियां डायरेक्टली जमीन के मालिक से ही डील कर पाएंगी और अधिग्रहण वहां से ही सीधे कर पाएंगी, उसमें सरकार जो बिचौलिए का खेल करती है वो जरूरी नहीं रहेगा। तो वो बहुत काफी अच्छी चीज है, काफी काफी बेहतर चीज है, क्योंकि दो वॉलंट्री, एक वॉलंट्री जिसको एक्सचेंज कहते हैं हम, कि दो लोग जो राजी हैं उनके बीच क्या करेगा काजी, तो मतलब सरकार की क्या वहां जरूरत है। तो उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उससे नौकरियां बढ़ेंगी। करदाता के लिए इसमें कुछ खास तो नहीं है, बट लैंड टैक्स जो है वो जरूर एक ये पहलू है, पर उसपे क्या है वो अभी क्लियर नहीं है
आका
कुछ
शुरू में
खास।
ये होगा कि जब लैंड अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं जो लैंड रेवेन्यू जो जो टैक्स है वो उस पर डिटरमिन करते हैं कि प्राइस क्या है लैंड का, तो वो कम होगा। लेकिन चूंकि लैंड की मात्रा भी बढ़ रही है साथ में, तो आप ये देखिए कि आज के डेट पे इसके हाल के बजट में हमारा जो टैक्स रेवेन्यू डेफिसिट, चाहे वो राज्य सरकारों का हो या फिर केंद्र सरकार का हो, वो काफी ज्यादा होता है। फिस्कल डेफिसिट जो जो उनका जो डेफिसिट हो जाता है, वो उनकी खर्च व्यय व्यय ज्यादा होता है और इनकम कम है, तो वो इनकम भी बढ़ेगा, जिसके कारण कल को उसका जो रिलेशन सीधे हमारी महंगाई से पड़ता है, या फिर हमारा टैक्स रेट कितना होता है, हम पे नया नया सेस लगा रही है सरकार या नहीं लगा रही है, तो ये सब कुछ कुछ कम हो सकता है। तो बिल्कुल, तो मतदाता का तो आपने बताया, और करदाता का मुझे ये भी है, लग रहा है कि शुरू में शायद कम हो जाए, लेकिन बाद में ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए आप देखिए तो ये फायदा होगा, और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है तो टैक्स रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
उपभोक्ता के लिए सबसे जो खास बात है वो ये है कि रियल एस्टेट के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, अभी बहुत जिनको हम कहते हैं शेडी होते हैं काफी ट्रांजेक्शन, उसमें तो काफी आसान होंगे अब ट्रांजेक्शन, काफी पारदर्शिता होगी उन खरीद बेच के ट्रांजेक्शन में। दूसरी बात है कि सरकारी गारंटी होगी कि आपकी जमीन है इसकी सरकार गारंटी ले रही है, आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है, और कानूनी खर्च जो है वो कुल मिलाकर उपभोक्ता के लिए घटेगा, टेंशन घटेगा, मेंटल टेंशन जिसको हम मोनेटाइज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केसेस के कारण कितना जो मेंटल टेंशन है वो जरूर घटेगा। क्रेडिट और लोन लेना आसान होगा, सबसे बड़ी बात गरीबों के लिए क्रेडिट और लोन लेना, और उसमें कई फार्मर्स भी हैं, उनके लिए जब लैंड टाइटल क्लियर होगा तो लोन लेना कितना आसान हो जाएगा, तो ये काफी अच्छी बात है। और मुझे
अफोर्डेबल हाउसिंग की बात, और अफोर्डेबल हाउसिंग भी बहुत सस्ता हो जाएगा। अभी जो कीमतें चारों तरफ बढ़ रखी हैं, अगर ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, ज्यादा घरें बन रही हैं, सप्लाई बढ़ रहा है, तो उससे जो आर्टिफिशियल सप्लाई अभी सीमित है, वो अगर जो अपने सीमित कर रखा है रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, लैंड की अवेलेबिलिटी, वो खत्म करते हैं तो कीमतें भी अफोर्डेबल होंगी, जब मैं भी सोच सकता हूँ कि मैं भी शायद घर खरीद सकूँ। तो तीनों का फायदा हमें, मुझे लग रहा है बहुत क्लियरली कि इन तीनों का फायदा है, तीनों
ग्रुप। इसमें बस एक पेंच है जो कि बहुत, जो इसके डिट्रैक्टर्स हैं वो एक पेंच इसमें जो है उसको बता सकते हैं कि देखिए साहब ये पेंच है और ये परेशानी हो सकती है, वो ये है कि भारत में काफी जगह स्क्वैटिंग है, जिसको हम कहते हैं स्क्वैटर सेटलमेंट्स कहते हैं, जो कि कब्जा कर लेना या फिर वहां पे उसको कहते हैं उस पर बैठ जाना, स्क्वैट का जो हिंदी लिटरल ट्रांसलेशन था वो बैठ जाना होता है, तो वैसा जो कब्जा है। और हमारे यहाँ एक और कानून है कि 12 साल से ज्यादा अगर किसी ने वहां पर स्क्वैटिंग की हुई है तो आप हटा नहीं सकते, तो चूंकि लैंड जो टाइटल्स हैं वो अभी ही इतने वेग हैं कि उनको सेटल करना थोड़ा पेचीदा काम है, तो वो देखना जरूर इंटरेस्टिंग होगा। और मुझे लगता है राज्य सरकारों का अपना जो हर अलग अलग राज्य सरकार का उस पर क्या रवैया रह रहा है उस पर वो डिपेंड करेगा। पर एक और बात है कि इससे अगर हम देखें तो हम काफी सारी मूवीज में देखते हैं, और ये एक बहुत ही पॉपुलर ट्रोप जिसको हम कहते हैं वो है, एक रजनीकांत की एक मूवी आई थी आई थिंक काला, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, फिर से और भी बहुत सारी मूवीज हैं, काफी सारी मलयालम की मूवीज हैं, काफी सारी तमिल की मूवीज हैं, काफी सारी हिंदी मूवीज है, काफी हिंदी मूवीज स्पेशली पुरानी हिंदी मूवीज में जो है स्लम्स का ये दिखाते थे कि कोई प्राइवेट डेवलपर आता है उस पर कब्जा करना चाहता है, सरकार के थ्रू होके आता है, वो सरकार से बेसिकली उसकी अनुमति ले लेता है और वो सरकारी जमीन है कागज पर चुकी।
तो 70, 80 और 90 के दशकों की सारी बॉलीवुड मूवीज के यही कहा स्टोरी लाइन हुआ करता था, हीरो उनको बचाता है,
बिल्कुल तो हीरो उनको बचाता है, और ऐसे जो डेवलपर्स हैं वो हमेशा हिंदी मूवीज में हमेशा लालची होते हैं, हमेशा परेशानी उन्हीं की होती है, गलती उनकी होती है, जबकि एक्चुअली भले ही वो सरकार के एलिमेंट्स मिले हुए हों पर वो उसमें उस बात पे फोकस नहीं रहता है कि यहाँ पे सरकारी लोग भी हैं मिले हुए। तो वो जो चीज है उसमें मेरा मानना है कि आप लैंड रेगुलराइजेशन कर सकते हैं वहां पर ये कह देना आसान है, करना थोड़ा मुश्किल है, बट वहां पर जिसकी भी, जिन लोगों ने भी स्क्वैटिंग करके रखी हुई है काफी समय से, आप उनको बस लैंड टाइटल दे सकते हैं। सरकार ने उस दिशा में बहुत ही कुछ किया है, उसमें बहुत सारी चीजें की हैं जो कि बहुत काउंटर प्रोडक्टिव रही है, बहुत ही खराब स्लम रीडेवलपमेंट के नाम पर जो भी कुछ हुआ है, और उसपे काफी सारी ऊंची बिल्डिंगें खड़ी की गई हैं, अलग जगह उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश हुई है पर वो लोग वहां पे टाइटल लेके कहीं और रहने लगते हैं, तो ये सब बहुत ही नॉर्मल है। तो उसके बजाय बस वहां पर जमीन जहां पे जिन लोगों ने लेके रखी हुई है वहां पे उनको जमीन का टाइटल दे देना बहुत ही इफेक्टिव तरीका होगा मेरे समझ से, और हाँ, उससे उन लोगों को भी एक टाइटल मिलेगा। तो जो कि हम डेड कैपिटल की बात करते हैं वो प्रॉब्लम है एक तरह से, इफेक्टिवली बहुत ही बड़े साइजेबल पॉपुलेशन के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये जरूर है कि
या डेड को अलाइव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जो आप जो स्क्वाटर की बात कर रहे थे जो बैठे हुए हैं, और वो कहीं कहीं पे कई दशकों से बैठे हुए हैं, और कभी तो उनके कई जनरेशन से भी बैठे हुए थे, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की जो बात करते हैं तो वहां पे तो जो ट्राइबल्स है हमारे वो कई दशकों से उस पर कई जनरेशन से काम कर रहे हैं। तो ये जो कागज मिल जाना और क्लियर टाइटल्स मिल जाने, उससे ये होता है कि फिर आप उस जमीन में, चाहे वो शहर में हो, गांव में हो, जंगलों में हो, कहीं भी हो, आप उस जमीन में उसे अपना हक मान करके उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। उसमें आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, पूंजी लगाना शुरू कर देते हैं, जो आप नहीं करेंगे अगर आपको पता नहीं है कि वो जमीन कल को मेरी रहेगी या नहीं रहेगी। कल को अगर कोई अफसर आके आपको वहां से हटा दे, सरकारी अफसर आके हटा दे, तो आप हमेशा इस चिंतित चिंता में रहेंगे कि मैं केवल उतना ही इन्वेस्ट करूं जो सामान लेकर के कल को अगर कोई बुलडोजर आ गया तो मैं सामान लेके निकल सकूं। तो इसीलिए वो कहा जाता है कि जो कुछ रिसर्च में पाया गया है कि क्यों स्लम्स में लोगों के पास टीवी होता है, फ्रिज होता है, डिश टीवी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन एक टॉयलेट नहीं होता है। उसका एक मेजर रीजन ये भी है कि आप टीवी, फ्रिज और डिश टीवी लेके जा सकते हैं अगर बुलडोजर आ गया, लेकिन आप टॉयलेट लेके नहीं जा सकते, है ना, कि वो तो एक फिक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। तो एक इसका एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि चाहे आप देख लीजिए, इनडायरेक्टली सैनिटेशन इंप्रूव होगा, और मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उस प्रॉपर्टी की, चाहे वो जमीन, चाहे वो खेती के लिए हो या फिर रहने के लिए, तो उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, और जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, और हम सबका फायदा है फिर। और भारत को अगर स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र की बात की जो हम पहल की बात कर रहे हैं कि उस कदम पे अगर हमें आगे बढ़ना है, तो उसके लिए ये भूमि विवाद का खत्म होना और क्लियर टाइटल्स का होना, और ये जो सारे डेड कैपिटल हैं तो उनका अलाइव होना, जो कि हमारे हाथ में है, ये एक बड़ी विडंबना है कि हम अमीर हैं लेकिन गरीब बने हुए हैं, एक हमारी अपनी सिस्टम्स की वजह से, हमारे अपने तंत्र की वजह से। तो वो तंत्र में अगर ये सुधार जल्दी होता हो सकता है, तो मुझे तो लगता है कि इस पे वॉर फुटिंग पे काम करना चाहिए, ना कि अभी धीरे धीरे सरकार अगर अपना पैर ड्रैग कर रही है,
बिल्कुल
कई
बिल्कुल
साल लगा रही है। यहाँ तो दशकों से मैं तो कई साल से सुन रहा हूँ कि काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, और अब तो बिल आया है, कब वो लॉ बनता है
बिल्कुल
देखने
बिल्कुल
की बात होगी, इस पे कब राज्य सरकार इसको कब इम्प्लीमेंट करना शुरू करती है, तो वो अभी थोड़ा दूर है। लेकिन अगर हर कोई इसमें वो फायदा देख सके, और ये फायदा इन तीन ग्रुप के लोगों का, तो बढ़िया होगा।
मैं एक और जो क्रिटिसिज्म है इसका, मैं वो टैकल कर देता हूँ जाने से पहले, क्योंकि तो अब हम लोग काफी आई थिंक सारे पहलुओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। एक और इसका क्रिटिसिज्म आता है जो कि अकेडमिया में आता है ज्यादा, मैंने देखा है, और जो भी लोग शहरों की पढ़ाई कर रहे होते हैं वो लोग इस बात को काफी उठाते हैं। पर मुझे जहां तक लगता है वो ये कहते हैं कि काफी सारी जो जमीन है वो कॉमन स्पेस है, यानी वहां पे बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। तो मतलब वो कहते हैं कि काफी आप देखेंगे कि सुबह में कुछ और कोई और कर रहा होता है, सुबह में एक अलग बाजार लगा हुआ होता है, शाम को कोई और आके वहां पे कुछ करता है। तो उस तरह के कॉमन लैंड काफी ज्यादा है, ना केवल शहरों में बट कस्बों में, गांवों में, हर जगह। पर मेरा मानना है कि पब्लिक स्पेस है, सही बात है, पर इसके पीछे का जो एक रेशनल है, जो लॉजिक है, वो एक इनफॉर्मेलिटी का ग्लैमराइजेशन करने जैसा है। तो हमारे यहाँ हम पॉवर्टी को ग्लैमराइज करते हैं, इन फॉर्मेलिटी को ग्लैमराइज करते हैं कि बहुत अच्छी बात है, ये तो मतलब कितना एग्जॉटिक सी चीज है, तो वो बहुत गलत है। और मेरा मानना है कि इसका भी एक उपाय है, क्योंकि पहली बात तो ये जो देखनी जरूरी है कि जो लोग जहाँ पे रह रहे हैं, जो कि मेनली जहाँ जिसका घर है, वो कभी भी इनफॉर्मल बहुत बार होता है, पर वो मल्टी यूजेस उसका कभी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आज सुबह कोई और रह रहा है, कल शाम को आके कोई और रहने लगेगा, वैसा नहीं होता है। वो बहुत ही रेयर है, वो जो भी नोमैडिक कम्युनिटीज हैं वो बहुत रेयर चीज है, रेयर फेनोमेना है। पर जो मेन जो हम देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, वहां पे जरूर कुछ ना कुछ जरूर ऐसा लैंड है जहां पे बस एक ही ग्रुप ऑफ लोग हैं जो कि उसको यूज करते हैं। तो उसको रेगुलराइज करने की बहुत जरूरत है। और जो पब्लिक स्पेसेज की जो बात है, उसको भी एक बेटर गवर्नेंस सिस्टम की जरूरत है। तो इनफॉर्मेलिटी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। कॉमन स्पेक बहुत मशहूर अर्थशास्त्री हैं, या फिर मैं कहूँ समाज शास्त्री हैं, या आप उनको एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट कह लीजिए, राजनीति शास्त्री, जो भी हैं, काफी फैसिनेटिंग काम है उनका। और वो पहली महिला हैं जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला था, एलिनोर ऑस्ट्रोम, उनका बहुत अच्छा काम है उस पर, तो वो एक अलग ही चर्चा का विषय है, तो उस पर जाएंगे नहीं हम। पर कॉमंस का जो गवर्नेंस है उसको भी बेहतर करने की जरूरत है, और उसको इनफॉर्मल इनफॉर्मल चीजों का, इनफॉर्मेलिटी को ग्लैमराइज करने से मुझे नहीं लगता है कि आपको उत्तर मिलेगा। उससे बेहतर है कि हम कुछ एक फॉर्मल गवर्नेंस स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ें, जहां पे हो सकता है अगर कुछ ऐसा ऐसी जमीन है तो वहां पे कम्युनिटी को ही दे दो, पर उसके भी एक क्लियर टाइटल्स होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और उस दिशा में हम आगे कदम बढ़ाएं तो जरूर बेहतर होगा।
बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लोकल प्रॉब्लम का लोकल सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है, और ऐसा नहीं है जो कहते हैं वन साइज फिट्स ऑल वाली चीज तो नहीं होगी। मतलब अलग अलग जगह के लोगों का अलग अलग कस्टम है, अलग अलग वहां पे बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है, चाहे वो जमीन से रिलेटेड हो, तो उसके लिए भी अगर प्रावधान होंगे मुझे लगता है, और उनका सोल्यूशन मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी अपनी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट सुटेबल अमेंडमेंट करेगी अपने अपने बिल में, और फिर उसी हिसाब से उनको इम्प्लीमेंट करेगी, और लोगों की जो जरूरतें हैं वो कहीं ना कहीं देर सवेरे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं कानून में यहाँ, एक्सेप्ट कहीं कहीं बहुत ज्यादा देर लग जाता है, और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि काफी समय लग गया है, ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। तो मुझे लगता है कि जो अब इस शो को हमने आज थोड़ा समय ज्यादा ले लिया है, लेकिन अच्छा है, चर्चा काफी अच्छी रही, और कुल मिला के अगर कंक्लूड किया जाए इसको, इसके समापन में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि स्वतंत्रता और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ने के लिए क्लियर टाइटल का होना, और जमीनी विवाद, किसी भी तरह का विवाद कम होना, और जमीनी विवाद स्पेशली क्योंकि वो सीधा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, सीधा अर्थ से, हमारे हमारे लाइवलीहुड से रिलेटेड है, अगर वो कम से कम हो तो अच्छा है, ना हो तो बहुत बढ़िया है, और अब तक ये काफी रहा है। तो अगर हम उससे बाहर निकल करके हम उस दिशा में बढ़ पाए जहां पे ये इस तरह की जो विवाद हैं जमीन से जुड़ी हुई वो कम हो, खत्म हो जाए, तो बहुत बढ़िया रहेगा। और ये पहल सरकार ने की है और ये लॉ वगैरह पे वो काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस पे थोड़ी अब कदम थोड़ी तेज जल्दी से चलाएं, तो ये एक मैं कहूंगा कि कदम चल रहा है, बट ये अगेन जैसा पिछले बजट में हमने एपिसोड में मैंने कहा था कि ये वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है, ये अभी हमें इंतजार करना होगा, देखना होगा कि कब आता है बिल, किस तरीके में, किस रूप में आता है, राज्य सरकार के उसको किस तरह इंप्लीमेंट करती है, कौन कौन से अमेंडमेंट्स होते हैं, लेकिन इसके होने की जरूरत है। तो उस लेवल तक कि हमने अब तक इतनी देर की है, तो हमें हमारे समृद्धि की राह पर एक बहुत बड़ा, ऐसा लग रहा है कि हम अपने अपने आप में एक बड़ा बोझा टांग लिया है हमने, जिसको हम आराम से गिरा सकते हैं, एक डेड वेट है ये जो जमीन के टाइटल्स क्लियर नहीं होना, तो उसको डेड वेट को अगर हम गिरा देते हैं तो हम बहुत तेजी से बढ़ पाएंगे उस रास्ते पे। तो बस ये कवायद है कि आप इस डेड वेट को गिराइए, और इसके साथ ही मैं आकाश आपका धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे शो में आज जुड़ने के लिए, शुक्रिया, अलग अलग पहलुओं पे
शुक्रिया कुमार। और बिल्कुल बिल्कुल, सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस शो पे इनवाइट करने के लिए, और मैं बस जाते हुए आपके दर्शकों को ये एक बार फिर से रियलाइज कराना चाहता हूँ कि कितनी इम्पोर्टेंट बात है जो कि आज हमने जो इस मुद्दे की सीवियरिटी की चर्चा की, वो उन्होंने देखा होगा कि कितनी ज्यादा जरूरी बात है, पर इसका कोई कवरेज उन्होंने मीडिया में नहीं देखा होगा, तो प्राइम टाइम पर इसकी कभी कोई चर्चा नहीं हुई, तो आप समझ सकते हैं कि जो टीवी मीडिया है आज वो कितना कितना दूर है, और कितनी बड़ी खाई है जो आम करदाता, उपभोक्ता, मतदाता को क्या मैटर करता है, और वो लोग उससे कितने अनभिज्ञ हैं। या सो दैट विल बी इट फॉर टुडे शो, एंड विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट।